الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تبارك وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا رواه البخاري صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے دوستو پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں آج کے سبق میں نرمی اختیار کیجئے اس پر باب قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر دین اسلام یہ ایسا دین ہے جس پر عمل کرنا بہت آسان ہے جو بھی انسان مرد ہو یا عورت دین پر عمل کرنا چاہیں تو اس کے لیے تو شریعت پر چلنا شریعت کے کاموں پر چلنا بہت آسان ہے کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا ولا یرید اللہ تمہارے ساتھ سختی تنگی کا ارادہ نہیں کرتے اللہ بھی جب بندوں کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں تو بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کریں بندے بھی آپس میں نرمی کا معاملہ بخاری شریف کی حدیث یہاں بیان کی ہے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ایک ایک حدیث بھی عجیب ہم لوگوں کے لیے دو تین حدیث بھی سننا مشکل ہو جاتا ہے دو تین حدیث بھی سننا مشکل ہو جاتا ہے لوگ بھاگتے ہیں نہیں سنتے ہیں. کیسے لوگ تھے پہلے زمانے میں ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے ایک ایک مہینے کا سفر کیا ایک ایک بخاری شریف میں ایک ایک مہینے کا سفر ایک حدیث کو سیکھیں صرف التحیات للہ والصلوات والطیبات کو سیکھنے کے لیے شام سے ایک صحابی آئے مدینہ منورہ کیسے کیسے لوگ ان کو یاد تھی التحیات لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ عالی سند کون سی ہے سیکھنے کے لیے तो नरमी का मामला अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यस्सिरु आपस में आसानी करो, वला तुअस्सिरु तंगी मत करो। उसकी एक मिसाल है हदीस में, ये भी उमदतुल कारी शेर बुखारी में नकल किया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, सबसे ज्यादा हदीस सीखने वाली सय्यदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, बहुत ज़हीन थी, बहुत छोटी उम्र भी थी। 2000 से ज्यादा हदीसें इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। यहूद के कुछ उलमा नबी अकरम, उनके जो बड़े बड़े लोग उलमा होते हैं, वो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, देखिए, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, हम आ सकते? आपने फरमाया ठीक है। जब आए तो उन्होंने सलाम कैसे किया पता है? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु नहीं, अस्सलामु अलैकुम, यानी वो अल्फाज को उन्होंने बदल दिया। सुन नहीं बात कि उसका मन ही बदल जाए, अस्सलाम को अस्सलाम कर दिया, और अंदर अंदर में हंस रहे थे कि हम इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इनको क्या पता है। कुरान मजीद में भी उसकी मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई, तो उन्होंने अस्सलाम अलैकुम के बजाय अस्सलाम अलैकुम कह दिया। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, कहीं किसी को आप गाली तो नहीं दे रहे, अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम गलत है, अस्सलाम अलैकुम क्लियरली बोलना चाहिए, यहूदियों की आदत थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में थी, उन्होंने जब सुना तो वो तो टप गई, वो तो अरबी जानते थे ना, हम तो अरबी नहीं जानते, हमें पता नहीं चलता है। वो जैसे दाखिल हुई उलमा, उन्होंने क्या कहा, अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम की जगह। मोहब्बत का तकाजा भी यही था कि इंसान उसका जवाब देता, कोई भी हो, सामने दुश्मन भी हो। तो हजरत आयशा फौरन जवाब देने लगी, बल अलैकुम अस्सलाम वल लअना, बल अलैकुम अस्सलाम वल लअना, साम के माना पता है क्या, ए नबी तुम्हारी मौत हो, और सलाम का माना क्या, सलामती हो। उन्होंने क्या कहा, साम अलैकुम तुम्हारी मौत हो। तो हजरत आयशा ने पलट करके वही लफ्ज कहा, बल अलैकुम अस्सलाम वल लअना, तुम्हारी मौत हो, तुम पर लानत हो। ये है सवाल जवाब, लेकिन अल्लाह के नबी की अखलाक, अल्लाह के नबी ने सुना कि आयशा ने बहुत खतरनाक जवाब दे दिया। औरतें होती है ना, शोहर की मोहब्बत में कभी कुछ बोल देती है, क्या कहा तुमने मेरे शोहर को, जवाब दे दिया, अल्लाह के नबी ने सुन लिया। अल्लाह के नबी क्या करे, या आयशा इन अल्लाह रफीक युहिब्बुर रिफ्क फिल अम्र कुल्ली, अल्लाह नरम है हर काम में, नरमी को पसंद करता है। देखो क्या जवाब दिया, अल्लाह नरम है हर काम में, काम डाउन काम डाउन। देखो कितना खतरनाक उन्होंने, यानी गाली दी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या बद्दुआ दी। तो हजरत आयशा के जवाब में हजरत आयशा को कह रहे हैं, उनको नहीं कह रहे, इन अल्लाह रफीक युहिब्बुर रिफ्क फिल अम्र कुल्ली। सो हजरत आयशा कहते, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं वो क्या कह रहे हैं तुमको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमल बताया कि मैंने उनको जवाब दे दिया, तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने क्या कह दिया, वालेकुम वालेकुम अस्सलामु अलैकुम वालेकुम, तुमने जो मुझे कहा वो तुम पर, और सांप गलत इस्तेमाल नहीं किया, वो कह सांप भी मर जाए लकड़ी भी न टूटे, ऑलरेडी मैंने कह दिया। सो मैंने भी उनको जवाब तो दे दिया, उन्होंने एक लफ्ज बोला था जो बद्दुआ थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईंट के बजाय, ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय इतना कह दिया, तुम पर भी, बस जवाब तो मिल गया। यहां इस हदीस में, जो हदीस है इसमें शरीयत का मिजाज समझा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरीयत का मिजाज क्या है, मामलात में, अपनी आदत में, अपने अखलाक में नरमी किया करो। किसी ने तुमको एक गाली, तुम 10 गाली दी, तो बाकी 9 गाली का अल्लाह को जवाब लेना है। तुमने तो बताया ना, एक तमाचा मारा तो एक ही मारा, 2 मार दिया तो दूसरे का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसी भी सिचुएशन हो जाए तो हमें भी अल्लाह के नबी सिखा कर गए हैं कि जो हो सके इतनी नरमी का मामला करके जवाब का जवाब हो गया। और अल्लाह तबारक व ताला नरम है, नरमी को पसंद करता है, और अल्लाह नरमी पर वो रहमतें उतारता है जो सख्ती पर नाजिल पर नहीं उतारते। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में जगह जगह बयान फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ताला के नाम तो आपने बहुत मर्तबा सुने हैं, जो 99 नेम्स है अल्लाह तबारक व ताला के, बहुत मर्तबा सुने। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के बेहतरीन नाम है, तुम उसको उसके नाम से दुआ करो, उसका नाम लेकर क्या है दुआ करो। बहुत सारे नाम है, इसीलिए इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी में एक दुआ लिखते हैं, वो दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उसमें एक नाम है रफीक, और यही लफ्ज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त कहा था, ए अल्लाह मैं रफीक आला से मिलना चाहता हूं। रफीक आला से कलमा नहीं पढ़ा था, रफीक आला से मिलना चाहता हूं। तो रफीक भी अल्लाह का नाम है, तो अगर कोई इंतकाल के वक्त कलमा ना पढ़ सका, कोई अल्लाह का नाम ले लिया, कोई अल्लाह की तारीफ का कलमा पढ़ लिया, सुभान अल्लाह पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते पढ़ते, या कोई भी अल्लाह की तारीफ अगर मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने पढ़ते पढ़ते या करीम इंतकाल पढ़ो, तो जो भी अल्लाह का नाम, इसलिए अल्लाह ने खुद कहा है अल्लाह के बहुत सारे नाम है, उस नाम से अल्लाह को पुकारो। तो किसी भी अल्लाह की तारीफ से, अल्लाह के नाम से अगर हो जाए, तो ऐसी सूरत में इंसान को क्या करना चाहिए, अल्लाह के वो इंसान का उस पर मौत भी आ जाए तो गोया कि उसकी कलमे पर मौत आ गई, अल्लाह की तारीफ पर मौत आई। इसकी तरफ इशारा किया कि जब भी दुनिया के अंदर में कोई भी मामला हो तो इंसान को क्या करना चाहिए, नरमी का मामला इख्तियार करना चाहिए। इस हदीस से पता चलता है, कुरान करीम की बहुत सारी आयतें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ भी यही नरमी का मामला करने का हुक्म फरमाया। देखिए कुरान करीम के 15वें पारे में, वकदा रब्बुका, अपने रब की इबादत करो, अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, उसके सिवा किसी की इबादत न करो, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ नरमी का मामला करो, एहसान का मामला करो, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों अगर बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक का इंतकाल हो जाए, एक बाकी है, बाप का इंतकाल हुआ मां बाकी है, मां का इंतकाल हुआ बाप बाकी है, फला तकुल लहुमा, अल्लाह फरमाते 3 काम करो, एक तो कहा उसके सामने उफ न करो, देखा उफ न करो। मैं तो चाहता हूं कि ये बयान मेरा आज का है, दो चार बातें जबान पर आएगी, सुनाना चाहता हूं। हर घरों में इसको इसको सुनना चाहिए। सब तो आते नहीं यहां पर, अपने बच्चों को समझाओ। वला तकुल लहुमा उफ, अपने मां बाप को लफ्ज उफ तक ना कहो। ये उफ है ना, डिक्शनरी में सबसे घटिया वर्ड है, सबसे लोअर, यू कहते हैं सबसे लोअर, इससे लोअर कोई वर्ड नहीं है। वला तकुल लहुमा उफ, वला तनहर हुमा, उन्हें शाउट ना करो, नरमी से बात करो, नरमी से बात करो। हदीस में आता है, रिवायत में आता है, आपने पढ़ा है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी आए और मां शोल्डर पर बैठी हुई थी, मां कहां बैठी हुई थी, शोल्डर पर, और फरमाया अल्लाह के अब्दुल्लाह इब्ने उमर से, ये अब्दुल्लाह इब्ने उमर कौन है जिन्होंने 60 टाइम हज पढ़ा है, 60 हज, ये परफॉर्म 60 हज, और 1000 मरतबा उमरा किया है, परफॉर्म 1000 उमरा, और 1000 गुलाम को अल्लाह के रास्ते में आजाद किया। ये हजरत उमर के बेटे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उमर। उसने आकर कहा अब्दुल्लाह इब्ने उमर से, Did I fulfill the rights of my mother? क्योंकि मैं इतने दूर से उनको कंधे पर उठा, आज के तो व्हीलचेयर है ना, अब तो व्हीलचेयर है, उस जमाने में कहां व्हीलचेयर थी, आदमी अपने मां या बाप को कंधे पर उठा के लाता है। अभी बहुत सारे लोग आते हैं मां बाप को व्हीलचेयर में लेकर, उस जमाने में कंधे पर उठा कर लाते थे और कंधे पर ही तवाफ किया उठाकर काबतुल्लाह का, और फिर मीना, फिर मुजदलिफा, अरफात, मुजदलिफा, मीना, हज पूरा पढ़ाया, वापस आया, तवाफ ज़ियारत के बाद पूछा अब्दुल्लाह इब्न उमर से, क्या मैंने मेरी मां का हक अदा कर दिया, क्या मैंने मेरी मां का हक अदा कर दिया? तो अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या फरमाते, The moment your mother gave you birth, जिस वक्त में मां को लेबर पेन हो रहा था, क्या हो रहा था, लेबर पेन, उस लेबर पेन का भी हक अदा नहीं हुआ, पूरी जिंदगी तो छोड़ो, यू डिड नॉट इवन द फुलफिल द राइट ऑफ द लेबर पेन। ये मां है, ये बाप है, बाप जन्नत का दरवाजा, मां जन्नत है, मां के कदमों के नीचे अल जन्नत तब तहता अकदामिल उम्महात। उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल, वंस माय मदर सेड टू मी, मेरी मां ने मुझे कहा कि मुझे खजूर खाने का जी चाहता है, खजूर खाने का जी चाहता है, कहीं से भी लिया, सीजन नहीं थी, कोई सीजन नहीं। उसामा बिन ज़ैद जा रहे यहां से वहां से वहां से वहां, लेके सीजन नहीं है, अभी तो इतनी है का सीजन भी खजूर मिल जाता है, लास्ट ईयर का, 3 साल का मिल जाता है, उस जमाने की बात करो, अल्लाह के नबी के जमाने, सीजन नहीं खजूर, अब तो मार्केट में बिके बिकता नहीं, इतना ज्यादा खजूर है। लेकिन ख्वाहिश थी मां की खजूर खाने की, और बेटा बेटा होता है, और हमारे हमने काठी लाओ फैक्ट्री नहीं माले, कहां से लाओ, मैं है ही नहीं, है ही नहीं, कहां से लाओ। बिश्र हाफी नाम सुना, बिश्र हाफी घर में थे, किसी ने दरवाजा डक्का अली हिलबा, दरवाजा किसी ने नॉक किया, और मैं कौन है, अस्सलाम अलैकुम अना खादिम उख्तिक, मैं तुम्हारी बहन का नौकर हूं, यानी तुम्हारी बहन ने मुझे कुछ काम के लिए भेजा है। दरवाजा खोला, सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, तो कैसे आना हुआ, कहा बहन ने आपको सलाम कहा है, सिस्टर गेव यू सलाम, और उन्होंने कहा आज दोपहर में जोहर के बाद आपकी दावत है बहन के यहां। दोपहर में जोहर के बाद भाई की दावत है, कहां पर? ठीक है, वालेहस्सलाम वालेक, उस पर भी सलाम, तुम पर भी, ठीक है। क्या जोहर की नमाज पढ़कर पहुंच गए वहां, अब खाने के लिए बैठे तो दस्तरखान के ऊपर रोस्टेड फिश थी, बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन खाना था। तो ये खाना देखकर फयुबदऊ यबकी, रोना शुरू किया। तो बहन ने पूछा भाई ठीक तो हो, क्यों रो रहे हो? तो क्या कहा, क्या मेरे सामने ऐसा खाना फ्रेश? कहा रोवो नहीं, राई तू अल्लैल बारहा, लास्ट नाइट में मैंने अम्मी को ख्वाब में देखा। मां का इंतकाल हो गया होगा, दोनों की मां, ख्वाब में देखा और मुझे कहा बहन भाई को दावत दे और उसको अच्छी मछली खिला। मां ने ख्वाब में किसको कहा? ये बिश्र हाफी खुद लिखते हैं। तो बिश्र हाफी और ज्यादा रोने लगे कि ओ मेरी वालिदा, मेरी मां तो दुनिया में थी तो मुझे हर वक्त याद करती थी कि बेटा कब आएगा, खाए ये वो तैयारी सब कुछ, आज मरने के बाद भी तू मुझे याद कर रही है। ये मां है, ये कौन है? ये मां है, ये बाप है, याद करते मरने के। इसीलिए रिवायत में आता है जब मां और बाप का इंतकाल हो जाता है तो बच्चों के नेक आमाल और बच्चों के बुरे आमाल को मां बाप को बतलाए जाते हैं। अगर बुरे आमाल है तो मां बाप को बहुत तकलीफ होती है कि मेरा बेटा इतना गंदा अमल कर रहा, ड्रग्स ले रहा, शराब पी रहा, नमाज नहीं पढ़ता, फुला 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 फुला। और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी फरमाते हैं अल्लाह के नबी को भी बतलाया जाता है ये आपकी उम्मत के फुला 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 के आमाल है। कितनी तकलीफ होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होगी, मां बाप को कितनी तकलीफ होगी। मरने के बाद भी हमारे आमाल, हमारे गुनाह, हमारी नेकियां उन पर पेश की जाती, बतलाई जाती है। उस जमाने में लोगों में मोहब्बत होती थी, लोगों में, भाई बहनों में, मां बाप औलाद में बहुत मोहब्बत होती थी। हमारे यहां दारुल इफ्ता में हजरत मुफ्ती खालिद सैफुर रहमान साहब फरमाते हैं कि फतवा देते हुए मैं कभी गुस्सा नहीं होता हूं, लेकिन एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। दो भाई आए और वो मेरे सामने बैठकर कहने लगे कि ये मेरा भाई है बिल्कुल मां को रखने के लिए तैयार नहीं, बूढ़ी मां है मेरी, बाप इंतकाल कर गए, मां को रखने के लिए तैयार नहीं और मुझे फोर्स कर रहा है कि तुझे पूरी जिंदगी रखना पड़ेगा। मुफ्ती खालिद सैफुर रहमान फरमाते हैं मुझे इतना गुस्सा आया कि तुम्हारा केस और मुकदमा तो ऐसा होना चाहिए कि मैं चाहता हूं मेरी मां को रखूं लेकिन मेरा भाई देता नहीं, या इसका ऐसा होना चाहिए मैं चाहता हूं लेकिन मेरा ये भाई मुझे मां को देता नहीं, ऐसा होना चाहिए, बजाय तुम दोनों कह रहे हैं 50-50, एक महीना मेरे घर है एक महीना तुम्हारे घर, तुम एक मां को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, उस पर दोनों भाई झगड़ रहे। बहुत गुस्सा है, होता एक मां और बाप 5-10 बच्चे को पाल लेती है लेकिन 5-10 बच्चे एक मां को नहीं पाल सकते, ये बिल्कुल फैक्ट है, दुनिया में देख रहे। गोया मां फिर बोझ बन जाती है, क्या बन जाती है? बोझ बन जाती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात से बात की, अशय्यु बिशय्युज करो, एक चीज के बाद दूसरी चीज याद आती है, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء میں گئے، عمرۃ القضاء میں اندازہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر لیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، حضرت حمزہ کا بھی تو انتقال ہو گیا تھا وہاں غزوہ احد میں، اس کے کچھ سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے، عمرۃ القضاء کرنے گئے، پہلے سال جانے نہیں گئے، پھر دوسرے سال قضاء کرنے کے لیے گئے، تو وہاں حضرت حمزہ کی بیٹی تھی، بیٹی تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کزن ہوتے تھے نا، حضرت حمزہ تو چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو چچا کی بیٹی ہے یہ، تو کزن ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے مکے میں نہیں رہنا ہے، مجھے مدینہ لے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، 1400 صحابہ تھے، 1400، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا اس بچی کو لے جا کر کون کھلائے گا پلائے گا، بڑی کر کے شادی کرائے گا، کون ہے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، رشتہ دار حضرت علی کی چچا کی بیٹی، حضرت علی کے والد اور حضرت حمزہ دونوں کیا تھے؟ بھائی تھے، تو یہ کزن ہوئی، میں لک آفٹر کروں گا میرے گھر میں، حضرت فاطمہ کے گھر میں لک آفٹر کروں، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میرے رشتہ دار میں ان کو لے جاؤں گا، کروں گا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ میرے گھر میں میری بیوی اس کی خالہ ہے، اس کی کیا ہے؟ خالہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا، دیکھو اس زمانے میں لوگ لڑتے تھے رشتے دار لڑکی کو بڑا کرنے کے لیے، آج تو ماں کو بھی لک آفٹر نہیں کرتے، وہ تو کزن ہے، یہ تو سگی ماں ہے جس نے تم کو جنا ہے، جس نے کتنی تکلیف اٹھائی اس کو لک آفٹر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرمایا الخالتو کل ام، خالہ کو دے دیتا ہوں جعفر کو، اس لیے کہ خالہ جو ہے ماں کے درجے میں ہے، ہمارے یہاں بھروچ ضلع میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماسی، پشتوں بھی کیا کہتے ہیں؟ ماسی کہتے ہیں نا، ماسی یعنی ماں جیسی، ماسی کا کیا مانا، اور ماں اور منہ مامو جو ہوتے ہیں نا، مامو، وہ مامو کے منہ میں ماں کی خوشبو ہوتی ہے، مامو کے منہ میں کیا ہوتا ہے، اگر سچا مامو ہو تو، سچا مامو ہو نا تو بھانجو کو لک آفٹر کرتا ہے، ماں اور منہ جس کے منہ میں ماں کی کیا ہوتی ہے، خوشبو، میری بہن کے بیٹے ان کو دیا، تو میں سنا رہا تھا آپ کو کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ کھجور والی سیزن نہیں تھی، گئے گئے تلاش کرتے 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 جگہ پر گئے، دکان میں مل گیا، لیکن اس دکان میں بہت مہنگا تھا، اس لیے کہ جب سیزن نہ ہو تو چیز کیا ہوتی ہے؟ مہنگی ہوتی ہے، جیسے کووڈ کے زمانے میں جنجر بھی کتنا مہنگا ہو گیا تھا چائے بنانے کے لیے، لوگ جنجر بڑے چائے زیادہ پیتے تھے نا، تو جنجر بھی مہنگا ہو گیا اور ٹیشو بھی مہنگا ہو گیا تھا، جب سیزن نہیں ہوتی تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مہنگی ہو جاتی ہے، اور گھاس کی طرح لوگ حکیم بن گئے تھے، گھاس کیسی اگ جاتی ہے، ہر گلی میں ہر آدمی حکیم بن جاتا تھا، بھائی ایسا کرو کووڈ سے بچنے کے لیے، ایسا کرو ایسا کرو، کتنے حکیم بن گئے تھے، تو ساتھی نے کہا اتنا مہنگا کھجور، اتنا مہنگا کھجور آپ خرید رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے، اس سے بھی ڈبل پرائز میں ہو، لیکن میری ماں کی خواہش ہے، جس ماں نے مجھے اتنا سال کھلایا پلایا بڑا کیا، کیا میں اس کو ایک مرتبہ کھجور نہیں کھلا سکتا، یہ تھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے لیے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رضا رب فی رضا والدی سخت رب بھی فی سخت الوالد، ماں باپ کی رضا مندی اللہ راضی ہے،
और साथ में एक बात तो कहा, उफ ना करो, वला तकुल लहुमा उफ, वला तनहरहुमा, और उनको शाउट ना करो। आज तो मां को सलाम भी नहीं करता, मिलने के लिए दूर की बात है। डोंट इवन मेक सलाम टू द पेरेंट्स।
घर में जाएं, पहले अपनी मां को सलाम करें, बोसा दें, बाप को बोसा दें। आजकल की यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं,
जानते ही नहीं घर में कोई है। और कहा तेरी मां और बाप का हक तू पूरी जिंदगी अदा नहीं कर सकता है, तो अल्लाह कहते हैं उस हक को अदा करने के लिए मैं तुझे एक दुआ सिखाता हूं, तू रोजाना अपने मां बाप के लिए वो दुआ पढ़, रब्बिरहमहुमा। आगे कह रहे इसी आयत में रब्बिरहमहुमा, और क्या कहा, अपने पुणों को झुका, नरमी का मामला कर। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी मेरे वालिद साहब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु, हम जब खाने के लिए बैठते थे तो हम अब प्लेट में हाथ नहीं लगाते थे खाने में, जब तक अब्बा शुरू ना करे, जब तक बाप खाना शुरू ना करे। किसी ने पूछा क्यों, कहा क्या मालूम बाप को क्या चीज इसमें से पसंद है, पहले वो खाए फिर हम खाएंगे।
ये थी हसन हुसैन रजी अल्लाह।
फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते थे अब्बू के साथ, तो हसन आगे चलते थे और हुसैन पीछे और बाप बीच में, ताकि आगे से कोई अब्बू को तकलीफ ना दे, पीछे से भी कोई तकलीफ ना दे। और जोहर और असर में तो दिन होता था, रात नहीं होती थी, दोनों पीछे चलते थे, बाप आगे चलते थे।
मैं कभी भी बाप से पहले हम बैठते नहीं थे, ये हजरत नवासे हैं जिनके अखलाक ये थे, जिनके अखलाक ये थे।
हम तो बाप से पहले नीचे बैठ जाते, वो बेचारे का पैर हुआ इस तरह से बैठेगा, बिठाना चाहिए फिर बैठना चाहिए। और जिनके माँ बाप नहीं है उनको जाकर पूछो, और जिनके माँ बाप है वो कदर नहीं करते, दुआओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दुआओं के दरवाजे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसीलिए तो कुरान करीम में सूरह कहफ में खिजर अलैहिस्सलाम के वाकये में खिजर अलैहिस्सलाम ने दुआ वो दीवार को सीधी कर दी और उसके नीचे खजाना था, अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते दो बच्चों का। तो पूछा ये सीधी क्यों की खिजर अलैहिस्सलाम, फरमाया इसकी कुरान में अल्लाह कह रहा है, इसके मुफस्सिरीन लिखते हैं सातवीं नस्ल में कोई नेक आदमी गुजरा है जिसकी बरकत से गोया के इन कई नस्ल के बाद बच्चे की अल्लाह हिफाजत कर रहा, बच्चे के माल की हिफाजत कर रहा।
माँ बाप की नेकियां काम लगती है बच्चों को, बच्चे के बच्चों को, पोतों को, नवासों को, आखिर तक हम दुआ करते हैं अल्लाह ता कयामत हमारी नस्लों में उलमा पैदा करना। ये दुआएं चलती है, ये दुआएं चलती रहती है।
इसलिए दुआ हमेशा याद कर लो, ये दुआ हमेशा पढ़ा करो, जिनके माँ बाप हयात है उनके लिए भी पढ़ो, जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ तो अल्लाह ही सिखा सकता है, हमारे दिमाग में आ भी नहीं सकती। अहला बचपन में मैं छोटा था, चलने का मोहताज, खाने का मोहताज, बोलने का मोहताज, पेशाब के लिए मोहताज, हर चीज में मोहताज, नेपी बदलने में मोहताज, कपड़े पहनने में मोहताज। अल्लाह उस वक्त मेरे माँ बाप ने मुझे रहम का करम का मामला किया, आज मैं चलता हो गया, डिग्री मिल गई, जवान हो गया, अल्लाह मैं सब कुछ कर सकता हूँ फिर भी माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता हूँ, तो आज भी उन पर रो रहम कर जो उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया है। ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला ही सिखा सकते हैं। और ये हमें कहा है बकूर, तुम कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लामा इब्ने शिरीन फरमाते हैं एक मर्तबा मेरी मां ने मुझे बुलाया, इब्ने शिरीन बहुत बड़े ताबीर के बहुत बड़े ताबीरी है, फरमाया मैं कुछ काम में मशगूल था तो मैंने जोर से कहा अम्मी आ रहा हूं, जोर से कह दिया, नरमी से कह रहे हैं, अल्लाह तो क्या कह रहे हैं, नरमी का मामला करो। मैंने जरा जोर से आवाज लगा दी कि अम्मी मैं आ रहा हूं, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अम्मी के सामने जोर से कह दिया। तो उन्होंने अल्लाह से तोबा करके दो गुलाम आजाद किए, अल्लाह मुझे माफ कर दे, दो गुलाम, एक गुलाम आजाद करे जहन्नम हराम है, दो गुलाम आजाद किए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंजुल उम्माल की हदीस है क्या कहा, सुनो यह हदीस मेरी माए और बहनें, सुनकर जाओ अपने बच्चों को सुनाओ बिर्रो, लेकिन कभी मां बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को बद्दुआ न दे, सब्र करे, बद्दुआ न दे, बद्दुआ बड़ी खतरनाक चीज है। इमाम ज़मखशरी, चलो बात से बात फिर याद आ गई, अभी तो मैं यही अटका हुआ हूं इस हदीस में। इमाम ज़मखशरी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, न हो के इमाम थे, ये ग्रामर के इमाम थे, इमाम मौलवी नहीं, मौला अल्लामा थे, सारे लोग उनकी किताब पर। उनको एक बहुत बुरी आदत थी, वो क्या था, छोटी चिड़िया को पालते थे, छोटी चिड़िया के ये काइट का जो स्ट्रिंग होता है ना, काइट पतंग का जो रस्सी होती है, उस रस्सी को चिड़िया के पैर में बांध देते थे और उसको उड़ाने के लिए रस्सी छोड़ते थे, तो वो दरख्त पर जाकर बैठ जाती चिड़िया, फिर उसको खींचते थे इस तरह, ढीली छोड़ते वो आगे जाती, फिर खींचते थे। ये आदत थी इमाम ज़मखशरी, जैसे हमारे मदरसे के बच्चों को कभी कभी कैट वो कैट के साथ, केटी के बच्चे केटी के साथ, बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते रहते हैं, मां के इधर से उधर भगाते इस तरह। तो कहा एक मरतबा मेरी मां मुझे रोजाना कहती थी ऐसा मत कर, ये कमजोर जानवर है, चिड़िया है, छोड़ दे इसको। लेकिन मैं मजे करता था उसके साथ, खेलता रहा, छोटा था। तो एक मरतब मैंने ढीला छोड़ा तो चिड़िया दरख्त पर जाकर बैठ गई, फिर मैंने जोर से खींचा, अब मेरे हाथ में चिड़िया नहीं आई, चिड़िया तो वहीं रह गई, उसका पैर आ गया, उसका पैर अंदर से निकल गया। मेरी मां ने देखा तो मेरी मां ने मुझे कहा, बहुत गुस्से हो गई, मैं तुझे कब से कह रहा था, कह रही थी ऐसा मत कर, तूने एक बेजुबान जानवर का पैर तोड़ा, अल्लाह भी तेरा ऐसा ही पैर तोड़ेगा। बस कह दिया, मां की बद्दुआ लग गई, कभी लग जाती मां की बद्दुआ, कोई वक्त होता है पता नहीं कब भी लग जाए। फरमाया जब मैं बड़ा हुआ और मुझे मैं गिर गया और मुझे चोट लगी पैर में, डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, तुम्हारा पैर क्या है, काटना पड़ेगा। तब ऑपरेशन के बेड के ऊपर मुझे मेरी मां का झुमला याद आया कि मेरी मां ने कहा था तेरा भी पैर टूटे। आई बात समझ में? इसलिए हदीस सुन लो, वक्त हो गया, बेरू आबाकुम तबर्रुकुम अबनाउकुम, तुम अपने वालिदैन के साथ नेकी का मामला करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी का मामला करेगी। तुम अपने वालिदैन के साथ नेकी का मामला करो तो क्या करेंगे वालिदैन, क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नेकी का मामला करेंगे। हाँ, ये फिर बाद में पछताते हैं, कहीं हमने किस आंखों से देखे हैं। इसीलिए नबी अकरम साहब ने फरमाया, मां बाप अगर काफिर भी हो, मुसलमान न भी, और रिफ को बिल वालिदैन लौ कान काफिरी वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, कितना अजीब लफ्ज़, तुम्हारे मां बाप अगरचे काफिर हो फिर भी उनके साथ नरमी का मामला करो। तो वालिदैन के साथ नरमी के मामले का एक जिक्र हुआ, फिर बीवी अपने शोहर के साथ, शोहर बीवी के साथ नरमी का मामला करे। एक हदीस सुनाकर फिर आगे बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। वो हदीस ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे सहाबा के साथ। मेरी माए और बहने सुनो, ये बहुत जबरदस्त बात है, ये हदीस है। फरमाया तुम में से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति समानियत अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर एक का नाम है। हमारे यहां तो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 प्लाजा का होता है या मॉल का होता है या फिर मार्केट में होता है, ये गेट नंबर, ये गेट नंबर। वहां नाम होगा बाबुल वुजू, बाबु सलात, बाबु जकात, बाबु रियान, बाबुल हज, ऐसे नाम लिखे हुए होंगे। जिसने जो इबादत ज्यादा की है वो उस दरवाजे से दाखिल होगा, जिस पर जिस इबादत का गलबा होगा वो उसमें से दाखिल होगा। लेकिन साहबा ने पूछा, कोई ऐसा भी है कि जो हर दरवाजे से दाखिल होने के लिए हर दरवाजा बुलाएगा उसको? आठों आठ दरवाजे, ये तो मशहूर रिवायत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम में से अब साहबी शक हो गए कि किसका नाम आएगा। जब क्लास 4 में एक तालिब इल्म बहुत जहीन है, जिसका नंबर 1 आया तो सारे बच्चे की मेरा है, किसका है, किसका है? साहबा कह रहे किसका जवाब? अबू बकर है। सबने कहा सुभान अल्लाह, सारे दरवाजे अबू बकर के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी मर्द के लिए नहीं कहा है कि आठों आठ दरवाजा उनको बुलाएगा और आठों दरवाजे से वो दाखिल हो सकते हैं। हाँ मेरी माए और बहने, तुमको कहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरतों को कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सल्लत खमसहा, जो औरत 5 नमाजें पढ़ती रहे, कितनी? 5 नमाजें पढ़ती रहे, वह साम शह रहा, रमजान का रोजे रखे, बस रमजान के रोजे रखे, वह आसर फरज रहा, और अपनी इज्जत की हिफाजत करे, शौहर के अलावा अपनी इज्जत की हिफाजत करे, और वह अतात बाला, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। 4 काम बस, देखा, 4 काम करने हैं, नमाज की पाबंदी, रमजान के रोजे, और अपनी इज्जत की हिफाजत, समझ नहीं बात, और नंबर 4 पर शौहर की फरमा बरदार है। तद खोलो मिन आई अबवाबिन अबवाबिल जन्न शात, वो 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहे दाखिल हो जाए। ये औरतों के लिए, और किसी अबू बकर है कि मर्दों में और किसी के लिए नहीं है, लेकिन औरतों के लिए है खुला। तो अब जाहिर बात, हमारी बहुत सारी माएं और बहने ये काम है, माशाल्लाह नमाजें पढ़ती है, रमजान का रोजा रखती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, और साथ साथ में क्या, अपने शौहर के साथ नरमी का और मेहरबानी का मामला करे, इताअत का मामला करे। इंशाल्लाह फिर कभी सुनाएंगे, तो अभी तो वक्त नहीं है, फिर करेंगे इंशाल्लाह यहीं से, ठीक है? कि और किसका किसका, बीवी के लिए, फिर बच्चों के लिए नरमी का मामला किसके साथ कैसा होना चाहिए, इसी एक आयत के ऊपर इंशाल्लाह फिर करेंगे। या अरहमुर राहिमीन, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या दय्यान या सुल्तान, या क़दीम अल इहसान। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سبك مغفرة فرما اللهم سبك مغفرة فرما اللهم سبك مغفرة فرما اللہ پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ یا اللہ ہمارے بھائی بہن ان کی اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے قریب اور دور کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والی اور ہم سے محبت رکھنے والے اور ہم پر احسان کرنے والے، اے اللہ محبین محسنین جہاں کہیں ہو، الہ العالمین چاہے دنیا میں ہو چاہے دنیا سے چلے گئے ہو، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ جو ہمارے لیے دعا کرے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو تیری شان شان، اے اللہ انہیں بدلہ نصیب فرما، یا اکرم الاکرمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں دور دور سے آتی ہے درس حدیث میں، اللہ سب کا آنا قبول فرما، قدم قدم کو نجات کا ذریعہ بنا، یہاں تک آتی ہے اللہ ان سب کا آنا قبول فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی آل اولاد کی مغفرت فرما، سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما، سب کے گھروں میں الہ العالمین آپس میں محبت مودت نصیب فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہو انہیں شفا عطا فرما، جو بھی بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین جو اس مجمع میں بیمار ہے، جو گھروں میں بیمار ہے، جو ہسپیٹل میں ہے، اے اللہ جہاں کہیں پوری دنیا میں مسلمان بیمار پریشان حال ہے، سب کی اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ میرے مولا تو ان کی مغفرت فرما. ہمارے نصیر احمد صاحب، ناصر احمد جو اٹک سوی سنتر ہے، ان کی گھر والی کا انتقال دو دن پہلے ہوا، اللہ اس مرحومہ کی مغفرت فرما، اس مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی اولاد کو نیک اور صالحین میں سے بنا. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو صالحین میں سے بنا. ہمارے حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. ان کی بہن کا ہندوستان میں انتقال ہوا، حاجی احمد حافظ احمد پٹیل صاحب جو یہاں چیئرمین کے مسجد کے، ان کی بہن کا ہندوستان میں انتقال ہوا کینسر میں. اے الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ پسمان گدان کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھنا، ایمان پر باقی رکھنا، ایمان پر باقی رکھنا. اے اللہ ہدایت پر باقی رکھنا، اور جب ہمارا وقت آئے اللہ ہم سب کو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما. سب مل کر کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جب ہماری موت آئے اللہ اتنے ہی زور سے ہمیں کلمہ نصیب کر دینا، اتنے ہی زور سے ہمیں کلمہ نصیب کر دینا. یا اللہ بار بار الہ العالمین حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے میرے مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ انہیں عافیت صحت سکون نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما. یا ارحم الراحمین مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے، اے اللہ قبر کے فتنے سے اور آخرت کے حادثے اور تکلیفوں سے حفاظت فرما کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جانا نصیب فرما. اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے عہد کوثر کا پانی بھی نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان آمین کہنے والوں کی اور کہنے والیوں کی آمین کے ساتھ میری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور ہماری توبہ قبول فرما. گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، اب گناہ نہیں کریں گے، معاف کر دے. اے اللہ عبادتوں میں خوشی اور خضوع نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، تیری شان شان ہمیں بدلہ نصیب فرما، تیری شان شان اے اللہ ہمیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.